पहला, तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि बिजली के उत्पादन के लिए शक्ति गृहों में कोयला तथा खनिज तेल जलाया जाता है। परिणाम स्वरूप इन शक्ति गृहों से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होकर वायुमंडल में पहुंचती रहती है। दूसरा, विकसित एवं विकासशील देशों के असंख्य कारखानों में कोयला एवं खनिज तेल की अपार राशि जलाई जाती है। इन कारखानों की चिमनियों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तथा उसका वायुमंडल में लगातार सांद्रण होता रहता है। तीसरा, हरित गृह गैसों ग्रीन हाउस गैसेस, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा प्रमुख स्रोत परिवहन सेक्टर है। डीजल से चलने वाली रेलों, डीजल तथा पेट्रोलियम से चलने वाली स्वचालित वाहनों जैसे ट्रक, बस, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि, पेट्रोल से उड़ने वाले वायुयानों, डीजल से चलने वाले कृषि के वाहनों तथा उपकरण से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वायुमंडल में पहुंचती है। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन का चौथा प्रमुख स्रोत घरेलू उपयोग के लिए ईंधन के लिए लकड़ियों का दहन है। विकासशील देशों में खाना पकाने के लिए ग्रामीण अंचलों में भारी मात्रा में लकड़ियां जलाई जाती हैं, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निस्सृत होती है। वन विनाश द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। ज्ञातव्य है कि लोग कार्बन डाइऑक्साइड के उपर्युक्त तीन स्रोतों से प्रायः परिचित हैं, परंतु आम आदमी वन विनाश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के विमोचन की क्रियाविधि से परिचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि वन तथा मिट्टियां बिना ऑक्सीकृत कार्बन का बहुत बड़ा भंडार गृह हैं। एक अनुमान के अनुसार वनों एवं मिट्टियों में 300 अरब टन कार्बन भंडारित है। पौधे बाद में कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दो तरह से निर्मुक्त करते हैं। पहला, पौधों का विघटन होने पर तथा दूसरा, पौधों के जलाए जाने पर। वनस्पतियों का जलना कई रूपों में संपादित होता है। ए, घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ियों का ईंधन के रूप में जलाया जाना। बी, स उद्देश्य वनों में आग लगाना। सी, प्राकृतिक कारणों द्वारा वनों में आग लगना। उल्लेखनीय है कि वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का वृहद अवशोषक स्रोत हैं, क्योंकि वनस्पतियां अपना आहार निर्मित करते समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा का पौधों में कार्बन के रूप में भंडारण होता रहता है। यदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए वनों का बड़े पैमाने पर सफाया किया जाता है, तो मानव जनित स्रोतों से निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में ह्रास हो जाएगा, जिस कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ जाएगा। विश्वास किया जाता है कि अब तक वनों के विनाश द्वारा वायुमंडल में 90 से 180 बिलियन टन कार्बन की अतिरिक्त मात्रा का समावेश हो चुका है। 1860 ईस्वी से अब तक जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने से 150 से 180 बिलियन टन कार्बन वायुमंडल में गैसीय रूप में पहुंच चुकी है। गौण ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत हैलोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सम्मिलित किया जाता है। इन गैसों का वायुमंडल में विमोचन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक उपकरण, प्रसाधन की सामग्री, प्लास्टिक फोम आदि के उपयोग के दौरान होता है। मीथेन भी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसका प्रमुख प्रधान स्रोत धान की कृषि तथा पालतू जानवर का गोबर है। ऐसी कृषि फसलें जिनमें अधिक समय तक पानी रहता है मीथेन का उत्सर्जन करती हैं। इस आधार पर दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया मीथेन के प्रमुख स्रोत हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। तेज गति से उड़ने वाले जेट विमानों से इनका विमोचन होता है। भूमंडलीय उष्मन के पर्यावरणीय प्रभाव। भूमंडलीय स्तर पर तापमान में वृद्धि की जलवायु वनस्पतियों जीव जंतुओं एवं मानव समाज पर दूरगामी प्रभाव होगा। इन प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत है। एबी पीटक 1972 ईस्वी के अनुसार ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण विश्व स्तरीय औसत तापमान में कुछ अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से मानव समुदाय तथा कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तापमान में वृद्धि के कारण वर्षण तथा मृदा की नमी की मात्रा में कमी होगी, जिस कारण विश्व के अधिकतम विकसित कृषि प्रदेशों में कृषि पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि पौधे जंतु तथा कीड़े मकोड़े तापमान में वृद्धि के कारण परिवर्तित पर्यावरणीय दशाओं के साथ समायोजन कर सकते हैं, परंतु समस्त पारिस्थितिक तंत्रों को भारी क्षति होगी। यदि मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में सांद्रण बढ़ता जाता है तो महासागरीय भागों को कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकाधिक अवशोषण करना पड़ेगा। यदि महासागरीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य एवं वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होता है तो महासागरीय जल की अम्लता बढ़ जाएगी, जिस कारण सागरीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में भारी कमी होगी। सागरीय भागों में फाइटोप्लैंकटन की मात्रा एवं आवरण में कमी के कारण सागरी सतह के एल्बिडो में परिवर्तन हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के कारण महाद्वीपीय तथा पर्वतीय हिमनदों की हिम एवं आर्कटिक हिम टोपियां पिघल जाएंगी, जिस कारण सागर तल ऊपर उठेगा। सागर तल में वृद्धि के कारण तटवर्ती निचले क्षेत्र सागरी जल में डूब जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होने से सागर तल में 2050 तक 1 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। सागर तल में इस वृद्धि के कारण मिस्र के रूम सागर के तटवर्ती कृषि प्रदेश जलप्लावित हो जाएंगे, जिस कारण देश का 15% कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाएगा एवं 80 लाख कृषक बेदखल विस्थापित हो जाएंगे। इसी तरह बांग्लादेश के डेल्टाई प्रदेश का एक बड़ा भाग जलमग्न हो जाएगा, परिणाम स्वरूप 80 लाख से 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ लोगों तक को अपने कृषि क्षेत्रों एवं घरों से हाथ धोना पड़ेगा। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो वायुमंडलीय दाब में वृद्धि हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि वायुमंडल के अवशोषण बैंड में विस्तार हो जाएगा तथा पृथ्वी से होने वाली बहिर्गामी विकिरण तरंगों के लिए वायुमंडल की अपारदर्शकता बढ़ जाएगी, अर्थात पृथ्वी से होने वाले समस्त विकिरण का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाएगा, जिस कारण धरातली सतह एवं निचले वायुमंडल के तापमान में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि वर्तमान समय में जीवमंडल में समस्त जीवधारियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार समस्त वायुमंडलीय प्रक्रमों का स्थगन हो जाएगा तथा सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। ज्ञातव्य है कि ऐसी स्थिति चरम स्थिति होगी तथा इसके घटित होने की न्यूनतम संभावना है, इसे होना भी नहीं चाहिए। यह भी विश्वास किया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण समताप मंडलीय ओजोन में अल्पता तथा क्षय की प्रक्रियाएं और तेज हो जाएंगी, जिस कारण तापमान में वृद्धि होगी। कुछ विज्ञानियों, खासकर वनस्पति विज्ञानियों का यह भी दावा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि के कारण पौधों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। एक अनुमान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड में 300 से 600 ppm तक की वृद्धि होने से वनस्पतियों की उत्पादकता में 30% तक वृद्धि हो जाएगी। इस विचारधारा का अधिकांश वैज्ञानियों द्वारा खंडन किया गया है, क्योंकि अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होने से वनस्पति समुदाय, खासकर कृषि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि महासागरीय जल के औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, तो प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग के कारण प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो जाएगी। भूमंडलीय उष्मन के प्रभावों का सारांश। पहला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय रासायनिकी में परिवर्तन। दूसरा, वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन एवं उसके संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन। तीसरा, धरातली सतह एवं निचले वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि। चौथा, जलीय चक्र की क्रियाओं में वृद्धि। पांचवा, विश्व के सर्वाधिक विकसित कृषि प्रदेशों में वर्षा एवं मिट्टियों की नमी की मात्रा में कमी। छठा, विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव। सातवां, सागरी सतह के अल्बिडो में परिवर्तन, सागरी जल की अम्लता में वृद्धि तथा सागरी पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक उत्पादकता में ह्रास की संभावना। आठवां, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक एवं आर्कटिक हिमचादरों का पिघलना तथा उससे सागर तल में वृद्धि होने से सागरीय तटीय क्षेत्रों के निचले भागों का जलप्लावन एवं 850 मिलियन विस्थापित लोगों का अन्यत्र पलायन। नौवां, वायुमंडलीय वायुदाब में परिवर्तन। दसवां, कुछ क्षेत्रों में पादप उत्पादन में वृद्धि तो कुछ क्षेत्रों में ह्रास होने की संभावना। ग्यारहवां, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति एवं प्रचंडता में वृद्धि। विश्व मौसम संगठन के आंकड़ों के अनुसार जब से तापमान के आंकड़ों का अंकन एवं संकलन प्रारंभ हुआ है, सन 2005 से सबसे गर्म वर्ष रहा है। सन 2005 में 27 उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं, जो अब तक किसी एक वर्ष में आने वाले चक्रवातों में सर्वाधिक संख्या है। इनमें से 14 चक्रवात हरिकेन की तीव्रता वाले थे। हरिकेन कैटरीना अगस्त 2005, जिसने न्यू ऑर्लियंस को ध्वस्त कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के हरिकेन इतिहास में भीषणतम हरिकेन था। बारहवां, वर्षा के वर्तमान विश्व प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है। तेरहवां, मौसम की चरम घटनाओं, हरिकेन, टर्नेडो, चक्रवात, टाइफून, शीतलहर, गर्म लहर आदि की आवृत्ति एवं प्रचंडता में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का भारत में जलवायु पर प्रभाव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सदस्य एवं भागीदार होने के नाते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से देश की वर्तमान एवं भावी जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में प्रथम सरकारी रिपोर्ट को 1 जून 2004 को प्रकाशित किया। भारत में ग्रीन हाउस गैसों का इस रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक उत्सर्जन 1 मिलियन टन है तथा प्रति वर्ष उत्सर्जन की वार्षिक मात्रा 1.3 टन है। भूमंडलीय स्तर पर ऊष्मन के कारण औसत भूमंडलीय तापमान में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से देश के पश्चिमी तटीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश में मानसून कालीन वर्षा में 10 से 12% की वृद्धि हुई, जबकि मध्य प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी प्रदेशों तथा गुजरात एवं केरल के कुछ हिस्सों में 6 से 8% कम वर्षा दर्ज की गई। सन 1994 ईस्वी के स्तर से 2040 ईस्वी तक तापमान में 2 से 4 सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होने की संभावना है। भविष्य में भूमंडलीय ऊष्मन के कारण देश के अधिकांश क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा के दिनों में 15 दिनों की कमी हो सकती है। सन 2040 ईस्वी के बाद बढ़ते तापमान के कारण प्रमुख नदियां सूख जाएंगी, क्योंकि हिमनदों के समाप्त हो जाने के कारण हिमद्रवित जल की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। भूमंडलीय ऊष्मन तथा सामाजिक प्रतिक्रिया। भूमंडलीय ऊष्मन के होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को लेकर राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मानव समाज अत्यंत चिंताग्रस्त है। इस भूमंडलीय समस्या के निवारण के लिए अब मानव समाज सजग हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भूमंडलीय ऊष्मन तथा उससे होने वाले भावी जलवायु परिवर्तनों, भूमंडलीय पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी समस्याओं तथा उनके प्रभाव के प्रति जागरूक है तथा भूमंडलीय ऊष्मन के नियंत्रण तथा मानव जनित जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। कई संगठन, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं हैं जो मानव पर्यावरण के संबंधों, मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच अंतर क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले परिणामों तथा उनके समाधान के लिए संभावित कारगर उपायों के विषय में सक्रिय रूप से अध्ययन करने में लगी है। यह हर्ष का विषय है कि अब विश्व स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। ओजोन परत की अल्पता तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में वृद्धि से निपटने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाला सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन एवं उपभोग में रोक लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लंदन में 5 मार्च से 7 मार्च तक 1989 ईस्वी में विश्व के 180 देशों के अधिकारियों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों आदि की ओजोन परत की अल्पता पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कतिपय ऐसे उदाहरण हैं जो पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सक्रिय सहयोग को इंगित करते हैं। परंतु दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि राजनैतिक दांवपेच विश्व समुदाय को सर्वनाश के कगार पर खड़ा कर देने के लिए अब भी तत्पर है। सन 1951 ईस्वी के जनवरी फरवरी माह में घटित इराक एवं बहुराष्ट्रीय सेनाओं के बीच घमासान खाड़ी युद्ध ने खाड़ी देशों के पर्यावरण को जिस तरह से प्रदूषित किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की बर्बरता अभी नहीं गई है तथा उसे स्वस्थ पर्यावरण के स्थान पर आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ अधिक पसंद है। भूमंडलीय ऊष्मन को कम करने, भूमंडलीय पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं जैव विविधता को कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, विभिन्न राष्ट्रों, स्वयंसेवी, गैर सरकारी तथा सरकारी संगठनों द्वारा कई सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया गया है तथा कई महत्वपूर्ण संधियों एवं घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से निम्न सम्मेलन तथा संधियां महत्वपूर्ण हैं। पहला, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 जेनेवा में आयोजित। दूसरा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1980 में वियना में औद्योगिक कारणों से घटित जलवायु विषय पर आयोजित संगोष्ठी। तीसरा, ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 ईस्वी में आयोजित वियना कन्वेंशन। चौथा, 1987 ईस्वी में ओजोन परत की अल्पता को रोकने के लिए ओजोन परत को क्षीण करने वाले सीएफसी गैस के उत्पादन एवं उपभोग में कटौती के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति। पांचवा, 1988 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए कनाडा के टोरंटो नगर में आयोजित टोरंटो सम्मेलन। इस सम्मेलन में 2005 ईस्वी तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 20% कटौती करने का निर्णय लिया गया, परंतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित समुचित आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव के आड़ लेकर विकसित राष्ट्र इस समझौते से कन्नी काट गए। छठा, 1988 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन एवं विवरण प्रस्तुत करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का गठन किया गया। इस पैनल का प्रमुख कार्य पृथ्वी पर हरित गैसों ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव पर समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया। सातवां, 1990 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस की रोकथाम हेतु कारगर उपाय की तलाश के लिए दूसरे विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा अंतर शासकीय संधि वार्ता समिति का गठन किया गया। 1952 ईस्वी में जून में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण विकास सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन किया गया, जिसमें 154 देशों ने भाग लिया तथा जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। नौवां, 1995 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन के पक्षधरों के प्रथम सम्मेलन का बर्लिन में जून 1995 में आयोजन किया गया, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई सहमति नहीं हो पाई। दसवां, जलवायु परिवर्तन के पक्षधरों का द्वितीय सम्मेलन जुलाई 1996 ईस्वी में जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न तो हुआ, परंतु यह सम्मेलन भी असफल ही रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा पर कोई सहमति नहीं हो पाई। तेरहवा, बारहवा, 1997 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में किया गया, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य 1952 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न प्रथम सम्मेलन में निर्धारित एजेंडा 21 की क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना था। 13वां, 2004 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 10वीं जलवायु परिवर्तन की सभा का, जिसे 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है, का अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 6 से 17 दिसंबर 2004 को आयोजन किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय ऊष्मन की समस्याओं से निपटने के लिए कारगर रणनीति तैयार करना एवं क्योटो प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन करना। परंतु अफसोस का विषय है कि उक्त सम्मेलन का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। हर्ष का विषय है कि उन 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल को कानूनी जामा पहना दिया गया। अब औद्योगिक राष्ट्रों के लिए कानूनी तौर पर यह बाध्यकारी हो गया है कि वे या तो अकेले या कई राष्ट्र आपस में मिलकर सन 2012 तक 1990 के स्तर के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5.2% की कटौती करें, अर्थात 1990 में जितना उत्सर्जन था उससे 5.2% कम उत्सर्जन करने की 2012 की समय सीमा का अनुपालन करें।